today is between Master and Disciples from Hinduism's sacred text, Devi Bhagavatam, 4th book, chapter 5 to 7, will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Olexis or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. हिंदुत्व को पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवन धर्मों में से एक माना जाता है, जिसका मूल भारत में प्राचीन वैदिक सभ्यता से जोड़ा जाता है। प्रारंभिक आध्यात्मिक हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 900 ईस्वी पूर्व में संकलित हुआ। अन्य पवित्र हिंदू ग्रंथों में वेद, उपनिषद, भागवत गीता और रामायण शामिल है। अपनी गहरी आध्यात्मिक जड़ों के साथ हिंदुत्व एक विस्तृत, वैविध्य और रंगीन धर्म है। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कारण और प्रभाव, कर्म का नियम, एक अकेला स्वर्गीय जीव जिसके बहुत से अवतार हैं और जिसकी सभी जीवों के लिए जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति की इच्छा है। हिंदुत्व के पोषित मूल्यों में से एक मूल्य अहिंसा या अहिंसा है। हिंदुत्व के अनुसार धार्मिक मान्यताएं और दैनिक जीवन के अभ्यास अभिन्न होते हैं। इसका एक उदाहरण है कैसे अहिंसा को साकार द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो सभी जीवों के प्रति करुणा प्रदर्शित करता है। हम अब प्रस्तुत करते हैं उद्धरण हिंदुत्व के पवित्र ग्रंथ देवी भागवतम से, अध्याय 5 से 7, चौथे खंड से। इन अध्यायों में व्यास, जो पुराणों के लिए जाने जाते हैं, राजा जन्मेजय को बताना जारी रखते हैं। ऐसे आध्यात्मिक अभ्यासकर्ता को खोजना कितना दुर्लभ है, जो सचमुच अहम, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त होते हैं।
अप्सराओं, दिव्य सुंदरियों ने मुग्ध करने वाला, इस जगत में मुश्किल से देखा या सुना जाने वाला गीत गाना शुरू किया। दोनों मुनि भगवान विष्णु समान लगने वाले नर नारायण उनके संगीत से प्रसन्न हुए और उनको इस प्रकार संबोधित किया।
हे अप्सराओं, दिव्य सुंदरियों, मैं देखता हूँ आप यहाँ एक अतिथि के रूप में अपने दिव्य जगत से आई हैं। यहाँ शांति और पूर्ण आराम से रहें। हम खुशी पूर्वक आपके मेजबान के रूप में आपकी सेवा करेंगे।
व्यास ने कहा, हे राजन, दोनों मुनि यह सोचकर कि इंद्र ने ये अप्सराएं, दिव्य सुंदरियां, हमारी तपस्या भंग करने के लिए भेजी हैं, अहंकार से भर गए और अपनी तपस्या की शक्ति से एक नई अप्सरा, दिव्य सुंदरी के निर्माण का निश्चय किया, जो उन सभी वर्तमान अप्सराओं से अधिक दिव्य, अधिक शोभायमान और अधिक सुंदर होगी, जो साधारण दिखने वाली हैं और अपने व्यवहार में बेढंगी हैं।
और मुनियों, तपस्वी जिन्होंने मौन की शपथ ली हो, ने अपनी जंघाओं को ठोक कर या बजा कर तत्काल एक स्त्री का निर्माण किया, जो सभी संदर्भों में दिव्य सुंदर थी। इस सुंदर दिखने वाली स्त्री का नाम उर्वशी था, क्योंकि वह जंघा से उत्पन्न हुई थी। और सभी दूसरी अप्सराएं, दिव्य सुंदरियां, जो वहां उपस्थित थीं, उर्वशी को देखकर अचंभित रह गईं।
फिर मुनि नारायण ने आसानी से उतनी सुंदरियों का निर्माण किया जितनी अप्सराएं, दिव्य सुंदरियां उनकी सेवा के लिए थीं। तत्काल उत्पन्न हुई अप्सराएं, दिव्य सुंदरियां अपने हाथों में सभी प्रकार की भेंट लेकर और गाती और मुस्कुराती मुनियों के सामने आई। तपस्वी जिन्होंने मौन की शपथ ली हो और हाथ जोड़कर उनके सामने प्रणाम किया।
इंद्र द्वारा भेजी गई दिव्य सुंदरियां, जो दूसरों को मोहित करती हैं, अब स्वयं उर्वशी को देखकर चकित थीं। जो मुनियों तपस्वी जिन्होंने मौन की शपथ ली है कि तपस्या से उत्पन्न हुई और सभी संदर्भों में सुंदर, और यह देखकर उनके शरीर के बाल अपनी जड़ से खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया और मुनियों को इस प्रकार संबोधित करना शुरू किया।
हे मुनियों, हम अज्ञानी कन्याएं हैं, कैसे हम आपकी और आपकी तपस्या की महानता और आपकी स्थिरता की प्रशंसा कर सकती हैं? आप में अस्थिर मानसिकता और पवित्रता का कोई निशान नहीं है। वास्तव में अद्भुत है आपकी महानता। हम आश्वस्त हैं कि आप दोनों विष्णु के अंश हैं, और आपका खजाना आपकी सतत शांति और मन पर नियंत्रण है। हम यहाँ आपकी सेवा के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपकी तपस्या में बांधा डालने आए हैं, जिससे हम इंद्र की इच्छाओं को पूरा कर सकें। कितने अहोभाग्य हैं हमारे कि हमें आपके दर्शन हुए। हम नहीं जानते, हम यह भी नहीं जानते कि हमने कौन सा पुण्य किया है। हमने आपके प्रति महान अपराध किया है, फिर भी आपने हमें शाप नहीं दिया। हमें आपने अपने परिवार की तरह समझा और हमें क्षमा कर दिया। अतः हमारा मन दुख और चिंताओं से मुक्त है। हम आपकी क्षमाशीलता की प्रशंसा करते हैं। ज्ञानी संत तपस्या से उत्पन्न अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तुच्छ कार्यों में नष्ट नहीं करते हैं, जैसे दूसरों को शाप देना।
व्यास ने कहा, धर्म के वे दोनों पुत्र दो महर्षि महापुरुष आत्मनियंत्रित और इच्छाहीन इन शब्दों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, जो इन दिव्य सुंदरियों ने कहे। फिर उन्होंने सुंदरियों से अपनी तपस्या की आत्म अनुशासन शक्ति से दमकते हुए कुछ कहा। नर और नारायण बोले, हे सुंदरियों, हम आपसे प्रसन्न हैं। बेहतर है आप हमसे इच्छित वरदान मांगे, हम तत्काल वह आपको देंगे। बेहतर है आप अपने साथ इस खूबसूरत आंखों वाली उर्वशी जो हमारी जंघाओं से पैदा हुई को अपने देवराज इंद्र के पास एक उपहार के रूप में स्वर्ग ले जाएं। अब सभी देवों को शांति हो। बेहतर है आप अपने मूल स्थानों पर वापस चले जाएं। भविष्य में दूसरों की तपस्या को भंग नहीं करें।
सुंदरियों ने कहा, अब हम कहाँ जाएंगे? हम आपकी भक्ति द्वारा आपके चरण कमल में पहुँच गए हैं, और हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं है। हे नारायण, देवों में सर्वोच्च, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे कमलनयन, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं और हमें अपना इच्छित वरदान देना चाहते हैं, तो हम आपसे अपनी इच्छा प्रकट करें। हे देवों में देव, आपकी कला जगत की स्वामी है, इसलिए आप हमारे स्वामी हुए। हे शत्रुओं के संहारक, हम प्रसन्नता पूर्वक स्वयं को सेवा के लिए आपके कदमों में डालते हैं। उन 1650 खूबसूरत आंखों वाली सुंदरियां, जिसमें उर्वशी शामिल है, जो आपकी रचना है और जो अभी यहाँ विद्यमान है, उनको अपने आदेश से स्वर्ग जाने दें, और हम 1650 सुंदरियां जो पहले आई हैं, आपकी सेवा के लिए यहाँ बनी रहना चाहती हैं।
नारायण बोले, हे सुंदरियों, मैं स्थान पर तपस्या का अभ्यास पूरे 1000 वर्ष से अपनी कामना को नियंत्रित करके कर रहा हूँ। मेरा सुखों के भोग द्वारा परमानंद के साथ साथ सर्वोच्च धर्म को नष्ट करने का कोई इरादा नहीं है।
अप्सराएं दिव्य सुंदरियां बोली, पांचों ज्ञानेंद्रियों में ध्वनि सहित स्पर्श के द्वारा प्राप्त आनंद सर्वोच्च होता है और परमानंद के सोत्र के रूप में जाना जाता है। कोई दूसरा सुख इसके बराबर नहीं है। अतः आप हमारी इच्छा पूरी करें और इस गंध मदन पर्वत पर मुक्त होकर घूमें।
अध्याय 7, अहंकार।
व्यास बोले, हे राजन, धर्म के पुत्र उत्कृष्ट कौशल से इन सुंदरियों के शब्दों को इस प्रकार सुनकर मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। अगर मैं स्वयं को अभी आनंद में लगाता हूँ तो मैं मुनियों तपस्वी जिन्होंने मौन की शपथ ली हो के बीच हंसी का पात्र हो जाऊंगा। यह वर्तमान संकट निसंदेह मेरे अहंकार से उत्पन्न हुआ है। यह अहंकार किसी के धर्म को बर्बाद करने में पहला और अग्रमी होता है।
ज्ञानी संतों ने इस अहंकार को इस जगत पेड़ का मूल घोषित किया है। मैंने उन सुंदरियों को यहाँ आते देखकर मौन व्रत का पालन नहीं किया। मैंने उनके साथ बहुत अधिक वार्तालाप किया, अतः मैं इस संकट थोड़ी चिंता और दुख में पड़ा हूँ। मैंने अपने धर्म और नैतिक सिद्धांत तपस्या के मूल्य पर इन सुंदरियों को उत्पन्न किया। इंद्र द्वारा भेजी गई खूबसूरत और मोहक सुंदरियां मेरी तपस्या बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। अब अगर मैंने अहंकारवश सुंदरियों का निर्माण नहीं किया होता तो मैं इस मुश्किल में नहीं गिरा होता। अब मैं अपने खुद के बनाए जाल में दृढ़ता पूर्वक फंस गया हूँ, एक मकड़ी की तरह। अब मैं आगे क्या करूँ? अगर मैं इन सुंदरियों का त्याग करता हूँ, यह सोचकर कि विषय पर पुनः विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर इनका दिल टूट जाएगा और वे मुझे श्राप देती हुई चली जाएंगी। तब मैं कम से कम इस वर्तमान संकट से मुक्त हो जाऊंगा और फिर एक एकांत स्थान में उत्कृष्ट तपस्या का अभ्यास कर सकूंगा। अतः अब मैं क्रोधित होकर इन सुंदरियों से मुझसे दूर जाने को कहूंगा।
व्यास बोले, हे राजन, मुनि नारायण को लगा कि वे इस प्रकार प्रसन्नता पा लेंगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने मन में इस प्रकार सोचा, दूसरा महान शत्रु क्रोध है। यह दूसरों को दुख देने से बड़ा है और यह वासना और लोभ से बड़ा है। क्रोधवश लोग हत्या करते हैं, यह हत्या नरक का स्रोत है और सबको पीड़ा देती है। जैसे पेड़ एक दूसरे से रगड़ खाकर आग उत्पन्न करते हैं और स्वयं इसी आग में जल जाते हैं, वैसे ही इस शरीर से उत्पन्न होने वाली आग अंततः इस शरीर को मृत्यु की आग में जला देती है। व्यास ने कहा, छोटा भाई नर, अपने बड़े भाई की चिंता और निम्न अध्यात्म को देखकर जो सही है वह इस प्रकार बोला,
हे नारायण, आप बहुत बुद्धिमान और सुशील हैं, अतः क्रोध की इस भावना को छोड़ दें और स्थिरता तथा शांति को अपनाएं और भयानक क्रोध का दमन करें। क्या आपको याद नहीं कि यह इस अहंकार और क्रोध द्वारा ही था जिससे हमारी तपस्या एक पूर्व अवसर पर नष्ट हो गई थी और हमें प्रहलाद असुरों के राजा से पूरे 1000 दिव्य वर्ष तक गंभीर लड़ाई लड़नी पड़ी थी। हे देवों के देव, फिर हम बहुत मुश्किल में पड़ गए थे। अतः हे मुनियों के देव, इस क्रोध से छुटकारा पाएं, शांत हों। संतों ने शांति को तपस्या का मूल कारण और एकमात्र प्रयोजन घोषित किया है।
व्यास बोले, अपने छोटे भाई नर, धर्मपुत्र के इन शब्दों को सुनकर नारायण शांत हो गए। जनमेजय बोले, हे मुनियों के देव, उच्च आत्मा वाला प्रहलाद विष्णु का भक्त और शांति प्रिय हृदय वाला था। प्राचीन दिनों में उसके और इन ऋषियों के बीच युद्ध हुआ था। यह कैसे हुआ? ऋषि कैसे लड़ सकते हैं? मेरे मन में यह गंभीर संदेह है। धर्म के ये दोनों पुत्र तपस्वी थे और शांति प्रेमी थे, इनके और दैत्य सूर्य के बीच युद्ध कैसे हो सका? कैसे ये दोनों ऋषि पवित्र जीव उच्च आत्मा वाले प्रहलाद के साथ लड़े?
प्रहलाद बहुत धार्मिक, ज्ञान से भरपूर और विष्णु के प्रति बहुत समर्पित था। नर नारायण सात्विक, शुद्ध और तपस्वी थे, अतः अगर उनके बीच शत्रुता हुई थी तो ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म और आत्म संयम, तपस्या और धर्म केवल नाम के विषय हैं और सतयुग में भी श्रम बेकार खर्च किया गया था। तपस्या, ध्यान और मौन होकर मंत्रों को जपने का क्या मूल्य है? कोई कुछ नहीं पा सका।
उनकी तरह के व्यक्ति क्रोध और अहम से भरे अपने हृदय को नहीं जीत सके। क्रोध और ईर्ष्या तब तक नहीं पनप सकते जब तक भीतर अहम की भावना ना हो। सारी भावना, वासना, लालच, क्रोध इत्यादि अहंकार से आते हैं, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। 100 लाख वर्ष की कठिन तपस्या अहंकार की थोड़ी सी मात्रा से लगभग नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य उदय से अंधेरा पूरी तरह हट जाता है, वैसे ही थोड़ा सा भी अहंकार उत्पन्न होने से धार्मिक गुण का कोई नामो निशान नहीं रहता। जब प्रहलाद श्री भगवान हरि से लड़ सकते हैं, फिर इस जगत में उनके सभी गुण किसी प्रयोग के नहीं रहे।
कहाँ है धार्मिक गुण और कहाँ है शांति? जब शांत आत्मा वाले व्यक्ति नर नारायण दोनों ऋषियों ने लड़ना शुरू किया अपने सर्वोच्च लक्ष्य तपस्या पर ध्यान दिए बिना, जब अहंकार इन दोनों ऋषियों पर विजय पा गया, फिर हमारे जैसे कमजोर तुच्छ व्यक्तियों से इस अहंकार को अधीन करने के विषय में क्या अपेक्षा की जा सकती है? कौन अहंकार से इन तीनों लोकों में मुक्त हो सकता है? जब उच्च आत्मा वाले व्यक्ति जैसे ऊपर वर्णित किए गए हैं उनसे मुक्त नहीं थे। अब मैं आश्वस्त हूँ कि इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति कभी भी पहले अहंकार से मुक्त नहीं था, ना ही ऐसा कोई दूसरा भविष्य में होगा। लोहे या लकड़ी की जंजीर से बंधा फिर भी मुक्त हो सकता है, लेकिन जब कोई अहंकार द्वारा छेदित होता है वह उससे कभी भी मुक्त नहीं हो सकता।
यह अखिल ब्रह्मांड गतिज और स्थिर इस संसार प्रवास और उत्प्रवास में चक्कर काट रहा है, अहंकार द्वारा ढका हुआ है। कहाँ है फिर ब्रह्म जन? हे शपथधारी संत, कर्म प्रतिकार सिद्धांत मीमांसकों के अनुसार मीमांसक दर्शन के अनुयायी तार्किक और सत्य प्रतीत होता है। हे मुनि, आप इस कलयुग में मेरे जैसे कमजोर मानसिकता के लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जब महान व्यक्ति हमेशा वासना क्रोध इत्यादि के अधीन रहते हैं।
व्यास बोले, हे भरत के वंशज, कैसे प्रभाव अपने कारण से भिन्न हो सकता है? सोना और सोने का कर्णहार यद्यपि उपाधि गुण में भिन्न आकार का होता है, अपने मूल रूप में स्वर्ण धातु के समान है। धागा कपड़े का मूल होता है, अतः जैसे कपड़ा अपने धागे से भिन्न नहीं हो सकता, वैसे ही यह अखिल ब्रह्मांड गतिज और स्थिर अहंकार से उत्पन्न हुआ है, फिर कैसे यह अहंकार से मुक्त हो सकता है? यह सब गतिज और स्थिर घास की पत्ती सहित माया के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अगर यह उन गुणों से बना है तो उनको क्या पछतावा हो सकता है? जो ज्ञानी हैं और सभी परिघटनाओं को अवास्तविक समझते हैं, हे राजाओं में सर्वोत्तम, ब्रह्मा विष्णु या महेश, ये सभी भी संसार प्रवास या उत्प्रवास के विस्तृत समुद्र में अहंकार द्वारा भ्रमित और मोहित होकर घूम रहे हैं।
वशिष्ठ नारद और दूसरे मुनियों तपस्वी जिन्होंने मौन की शपथ ली है जैसे महापुरुष लगातार इस संसार प्रवास और उत्प्रवास में जन्म ले रहे हैं, इस त्रिलोकी तीनों लोक में कोई भी शरीरधारी आत्मा नहीं है जो कि इस माया से पूर्णतः मुक्त है और परमात्मा के परम सुख में शांत और लीन हो गई है। हे राजाओं में सर्वोत्तम, वासना क्रोध लालच और मोह सभी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। ये किसी भी शरीरधारी व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं। सभी वेदों और पुराणों का अध्ययन करना, सभी पवित्र तीर्थ धर्म स्थलों पर जाना, दान करना, परमात्मा पर सोचना और ईश्वर की पूजा करना, यह सब करके लोग फिर भी इंद्रिय सुख से जुड़े रहते हैं और चोर की तरह कार्य करते हैं। हे कुरु के पुत्र, तीनों युगों सतयुग स्वर्ण युग त्रेता द्वितीय युग द्वापर तृतीय युग में धर्म सच्ची शिक्षा नष्ट होती रही है और बहुत घायल हुई है। इस कलयुग में धर्म के बारे में क्या कहें? आप झगड़े लालच क्रोध को इस कलयुग में हमेशा जोर शोर से पाएंगे। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि आप किसी को वह सोचते और करते नहीं पाएंगे जो सोच योग्य है और वह करते पाएंगे जो करने योग्य नहीं है। द्वेष क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त ऐसा व्यक्ति इस कलयुग में इन दिनों दुर्लभ है। कुछ शांतिपूर्ण व्यक्ति इधर उधर आदर्श को बनाए रखने के लिए विद्यमान हैं।
राजा बोले, हे मुनि, वे कृपामयी और पवित्र हैं जो माया के इस मोह से मुक्त आत्मनियंत्रित होते हैं, जिन्होंने अपनी भावनाओं को जीत लिया है और जो अच्छे आचरण का पालन करते हैं। वे त्रिलोकी तीनों लोक से ऊपर उठ चुके हैं।
गुरु और शिष्य के मध्य आज के कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धरती ग्रह हमारा प्रिय निवास यहाँ सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर प्रमुख समाचारों के ठीक बाद अगला कार्यक्रम है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल्स। प्लेनेट अर्थ अवर लविंग होम इज अप नेक्स्ट राइट आफ्टर नोटवर्दी न्यूज हियर ऑन सुप्रीम मास्टर टेलीविजन।
फॉर मोर डिटेल्स Please visit www.suprememastertv.com/BMD.